Namaskar, Om Shanti, Suprabhat and Good Morning. Mind Body Medicine Conference के दूसरे दिन के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों से होना चाहिए, ऐसा हम सभी मानते आए हैं। तो आज के सुबह के सत्र में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। चलिए आज के कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की शुरुआत हम करते हैं। मनुष्य अपने ही विचारों को प्लेजेंट बनाने के बारे में कभी सोचता है? क्या कम हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने मन के विचारों को इतना सहज और सहल कर लें कि उन विचारों से हमें प्रसन्नता होती रहे? यानी हाउ टू मेक अवर माइंड प्लेजेंट या हाउ टू मेक अवर थॉट्स प्लेजेंट, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी इसकी संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। अफ्रीका में जन्मी उषा दीदी जी ने आध्यात्म के प्रति एक विशेष रुचि को बचपन से अपने अंदर जागृत किया। आज भी ये रामायण और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में विशेष रिसर्च करती हैं और इस पर विशेष व्याख्यान भी प्रस्तुत करती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में रामायण और महाभारत के आध्यात्मिक रहस्यों को ये बहुत ही सरल तरीके से जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करती हैं। भारत के प्राचीन राजयुग पर भी इनका अध्ययन काबिले तारीफ है। अनेकों टीवी प्रोग्राम्स के दौरान इन्होंने लोगों को आध्यात्म जीवन प्रबंधन संबंधी अनेकों टिप्स दिए हैं। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में भी दीदी जी के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी से।
ओम शांति। आज माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो भी विशेष इस कार्यक्रम के लिए हाजिर हुए हैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का विषय हम सबके सामने है, बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय के हिसाब से, और यह विषय है ख्यालों को खूबसूरत करो। कैसे हम अपने मन के विचारों को सुंदर बनाएं? क्योंकि सचमुच वर्तमान समय की यही पुकार है। आज हम सभी जानते हैं कि जिस तरह संसार के अंदर ये महामारी ने जिस तरह एक ऐसा मोड़ हर इंसान के जीवन में ले आया है कि हर कोई समझता है कि अब कब तक ये चलेगा, और इसीलिए इस महामारी से जीतने के लिए, विजय पाने के लिए आप सभी हर एक को यही एडवाइस देते हो कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाओ। जितना फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना ही हम जो है इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे, या हमें वो छू नहीं सकती है, और अगर लगी भी तो भी बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि खाली फिजिकल इम्यूनिटी की बात नहीं है, जिनकी फिजिकल इम्यूनिटी है भी, लेकिन अगर उनकी मेंटल इम्यूनिटी नहीं है तो भी आज बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, और विशेष करके परिवारों के अंदर, रिश्तों के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि हम सभी सुबह काम पर निकल जाते थे, शाम को घर आते थे या रात को घर आते थे, आए खाए पिए, कुछ थोड़ी देर बैठे बात किया और सो गए, दूसरे दिन भी सुबह उठे, फ्रेश हुए और फ्रेश होकर के नाश्ता आदि करके निकल गए, तो ज्यादा वक्त हमारा इकट्ठा नहीं होता था। परंतु लॉकडाउन के कारण देखा गया है कि जितना अधिक समय साथ में रहना हो रहा है अब एक दूसरे को और नजदीक से हम समझने लगे हैं तो हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज है, अच्छाई भी है बुराई भी है। और इसीलिए जहां अच्छाई बुराई दोनों चीज है, लेकिन क्योंकि हमारी मेंटल इम्यूनिटी क्षीण होने के कारण अधिकतर लोगों का ध्यान कमी कमजोरी के ऊपर ज्यादा जा रहा है, और जब कमी कमजोरी के ऊपर जाता है तो कई बार वो कमी कमजोरी के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। या पहले जानते थे कि ये कमी कमजोरी है, लेकिन इतनी हद तक होगी ये नहीं पता था, अब ज्यादा ही कुछ नजर आने लगा है। परंतु कहा जाता है, मैनेजमेंट में एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, कि वी ऑलवेज प्रोजेक्ट आवर ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स। और इसीलिए जब हमारा ही अपना रिफ्लेक्शन हम दूसरों के अंदर देखने लगते हैं तो उसकी कमजोरी शायद कम होगी, लेकिन हमारी कमजोरी रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जैसे मैक्सिमाइज्ड या मैग्निफाइड हो जाती है। और जब हम खुद ही अपने आप में उस कमजोरी के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम अपने प्रिय व्यक्ति के अंदर भी वही कमजोरी, क्योंकि वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही तो नजर आने लगेगा, तो इसलिए जब उसको देखते हैं तो काफी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन के कारण कई प्रकार से आज रिश्तों के अंदर मनमुटाव आने लगे हैं, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। भावार्थ ये है कि हर इंसान के अंदर कमी कमजोरी भी है, विशेषताएं भी है, लेकिन हमारा ध्यान कमी कमजोरी के तरफ क्यों जा रहा है, विशेषता के तरफ क्यों नहीं जा रहा है? जब कमी कमजोरी के तरफ जाता है तो क्या होता है, दोनों हाथ की ताली बजना शुरू होती है। हमारी भी कमी कमजोरी है, उनकी भी कमी कमजोरी है, तो जरूर है क्लैश तो होगी ही। और ये क्लैश होती है तो जैसे कहावत है कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो इसीलिए कहीं न कहीं वो रिश्तों के अंदर एक खटास उत्पन्न होने लगती है। परंतु उसको देखने के बजाय हम ये सोचें कि हर इंसान के अंदर विशेषता भी है, अच्छाई भी है। Everybody is blessed with some or the other beautiful qualities also, है कि नहीं? ये तो हम सभी मानते हैं। लेकिन जब हमारी अच्छाई और उनकी अच्छाई मिल जाएगी तो शायद वो एक ताकत बन जाएगी। जिस तरह कहा जाता कि गुलदस्ते के अंदर भी वैरायटी, रंग रूप खुशबू वाले फूल होते हैं तो बहुत सुंदर वो गुलदस्ता लगने लगता है, ठीक इसी तरह ईश्वर ने भी हर आत्मा को, हर व्यक्ति को इतनी सुंदर क्वालिटीज भी प्रदान की है। लेकिन चलते चलते क्योंकि वो क्वालिटीज ज्यादा यूज में नहीं आई तो कमजोरियां विकसित हो गई। जिस तरह शरीर के अंदर भी वीकनेस क्यों आती है, कि ताकत का अभाव यही वीकनेस है। ठीक इसी तरह जब अच्छाइयों को हम यूज नहीं करते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको और डेवलप नहीं करते हैं, तो उसका स्थान वो वीकनेस ले लेता है, और इसीलिए वो क्लैश, या तो क्लैश होगा या तो जब एक दूसरे की अच्छाइयों को, विशेषता को लेकर के चलेंगे तो वही हमारी ताकत बन जाएंगी। और गृहस्थ जीवन या हमारे रिश्ते बहुत सुंदर सुमधुर होने लगेंगे। तो उसके लिए जैसे कहा, हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बूस्ट करने की आवश्यकता है। सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी माना गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, इतने सुंदर विचार करने की ताकत है। लेकिन जिस तरह की एक रोजमर्रा की जिंदगी जीते 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 हमारे ख्यालों में वो खूबसूरती कहीं न कहीं समाप्त हो गई है, और वही के वही विचार चलते रहने से मनुष्य ऊबता चला जा रहा है कि अब क्या करें। ठीक है ना, तो रोजमर्रा की जिंदगी कहने लगे, माना विचार भी रोजमर्रा के हो गए। तो जो हमारी एक कैपेसिटी है सुंदर ख्यालों को विकसित करने की, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है या सुषुप्त हो रही है, डॉर्मेंट स्टेज में चली जा रही है। नहीं तो मनुष्य के पास ये कैपेसिटी है अपने ख्यालों को खूबसूरत करने की, और जितने ख्याल हमारे खूबसूरत होंगे उतना हम अपने आसपास वो एरोमा वातावरण के अंदर भी प्रवाहित करेंगे। हम अपने चारों ओर वो खुशबू को फैलाना शुरू करेंगे और हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव ऑरा बहुत सुंदर तरीके से हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में उभरने लगेगा। तो इसीलिए कहा कि आज मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत कहो या ईश्वर का वरदान कहो, वो है सोचने की क्षमता। लेकिन आज वो किस दिशा में जा रही है? देखा गया है कि मनुष्य के मन के अंदर जो विचार करने की कैपेसिटी है, तो ज्यादातर या हमारे फालतू विचार चलते हैं या हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और हर विचार के पीछे मेंटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या यूं कहूं मैं कि नेगेटिव और वेस्ट विचारों में वो मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है। और जितनी ही एनर्जी हमारी ड्रेन होती जाती है तो मन दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, क्योंकि उस मन को रिचार्ज तो हम कर नहीं रहे हैं। जिस तरह एक मोबाइल को भी रोज रिचार्ज करना पड़ता है तभी दूसरे दिन काम करता है, हमें अपने विचारों को भी, अपने मन को भी रोज रिचार्ज करने की जरूरत है। और कैसे करेंगे? जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। छठे अध्याय में बहुत सुंदर बात ये कही, वो मित्र कब बनता है, शत्रु कब बनता है? तो कहा कि जब इंद्रियों के रस के पीछे भागता है, कोई ना कोई इंद्रियों के रस के पीछे मन चला जाता है, या कोई ना कोई इंद्रियों की अधीनता में जब हम मन को ले जाते हैं, आसक्ति के पीछे ले जाते हैं, तो आसक्ति से कमजोरी भी आ सकती है। और इसीलिए मनुष्य का मन जैसे जैसे कमजोर होने लगा इन आसक्तियों के कारण, वैसे वैसे देखा गया कि आत्मा स्वयं का शत्रु बनता गया। और मित्र कब बनता है? तो कहा, जब मन को बहुत सुंदर विचार प्रदान करना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर पॉजिटिव विचारों के अंदर, पावरफुल विचारों के अंदर, सशक्त विचारों में उसको संलग्न करते हैं, तब आत्मा स्वयं का मित्र बनने लगता है। या दूसरा कहा कि जब इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है तब आत्मा स्वयं का मित्र बनता है। तब अर्जुन के मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि मन इतना विचलित क्यों होता है? तब भगवान ने उसको यही कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि मन ये अनेक रसनाओं के पीछे भाग रहा है, इसलिए तो विचलित होता है, क्योंकि उसमें उसकी वो शक्ति ड्रेन होने लगती है। जितनी शक्ति ड्रेन होती है और उसको रिचार्ज नहीं करते हैं तो मन कमजोर पड़ता है, और फिर वही विचारों का प्रभाव कितने स्तरों पर है। क्यों हमें अपने ख्यालों को खूबसूरत करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम खाली विचारों को खूबसूरत नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जहां जहां पड़ता है उन सबको भी साथ में लेकर के हमें चलना है। क्योंकि कहा जाता है मनुष्य के जैसे विचार होता है वैसे ही उसकी भावनाएं बनती है, वैसा ही उसका व्यवहार होता है। इसलिए भी हमें अपने ख्यालों को खूबसूरत बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज मनुष्य की भावनाएं दूषित होने लगी है और इसीलिए व्यवहार के अंदर भी जो रिश्ते हैं उसमें खटास आने लगी है। तब भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा कि योग माना क्या? योग अर्थात जहां कर्म में कुशलता हो, व्यवहार में कुशलता हो, एफिशिएंसी इन आवर बिहेवियर्स, एफिशिएंसी इन आवर एक्शंस। आज छोटी छोटी बातों में भी इम्पेशेंस हो जाते हैं, इतना मनुष्य अधीर्य हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, उसकी भावनाएं कैसे दूषित होने लगी है, और वो दूषित भावनाओं के कारण उसके व्यवहार में किस तरह से न चाहते हुए भी ऐसी चीज निकल आती है, बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है, या कभी कभी तो हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है जो सामने वाले को जैसे बहुत ठेस लग जाती है और ऐसे लगता है कि उसने क्या कह दिया, इसने ऐसा कैसा मेरे साथ व्यवहार कर दिया, और हमें पता भी नहीं चलता है कि सामने वाले को किस तरह की ठोकर लग गई है, शायद वो बोल भी नहीं पा रहा है, और फिर उसके अंदर जो हीनता की भावना आती है या नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और वो नकारात्मक विचारों के कारण उसका शिकार बनता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और वो डिप्रेशन में आकर के कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है, और फिर हमको अगर कोई महसूस भी कराता है कि आपने ऐसा कहा था या आपने ऐसा किया था इसीलिए ये हुआ, हम सोचे लेकिन हमने उस भाव से थोड़ी कहा था, हमारा ये भाव तो था ही नहीं। तो न भाव होता है न भावना होती है, लेकिन फिर भी व्यवहार के अंदर इनएफिशिएंसी अर्थात हमारे बिहेवियर में वो इनएफिशिएंसी, हमारे कर्मों में वो इनएफिशिएंसी जो आ गई, जिसके कारण हमारी अपनी लाइफ कहो या हमारे साथ कनेक्टेड जिसकी लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, बहुत बड़े जिसको कहा जाता मिसअंडरस्टैंडिंग की गैप क्रिएट हो जाती है। तो विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर, हमारे व्यवहार पर है। कहा जाता है कि विचारों में वो शक्ति है कि कोई भी विचार बार बार करते रहने से विचारों का एक वृत्त तैयार होता है, एक सर्कल तैयार होता है। एक बार विचार कर लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग करता है तो वो विचार एक बार आकर समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता है, वो विचारों का एक वृत्त तैयार होता है और बार 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 वो विचार चलता रहता है जो हमारी वृत्ति बनाता है, जो हमारी मान्यताओं को क्रिएट करता है। तो विचार ही हमारा एटीट्यूड, वृत्ति मनोवृत्ति और हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ सिस्टम वैसे ही बना देता है। इसीलिए फिर देखा जाता कि जो आप बार बार सोचते रहने से वो आपकी मान्यता बन गई और वो मान्यताएं कभी कभी जीवन के अंदर सही होता है। फिर कहते हैं मुझे पता ही था ये होना है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विचारों की शक्ति है वो विचारों की शक्ति उस चीज को कर देती है जिसको कहा जाता है संकल्प की सिद्धि, कि जो सोचता है इंसान और जितना इंटेंसिफाइड होता है बार 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 कोई विचार चलाते रहने से, जितनी उसकी इंटेंसिटी, जितनी उसको पावर दे रहे हैं हम, अपनी मेंटल एनर्जी दे रहे हैं, तो जितनी उसको मेंटल एनर्जी मिलती है उतना वो खो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यू आर व्हाट यू थिंक। क्योंकि बार बार सोचने से हमने न सिर्फ अपनी भावनाएं वैसी बनाई, न सिर्फ हमने अपना व्यवहार वैसा किया, लेकिन बार बार सोचने से हमारी मनोवृत्ति उस विजन के आधार पर और जितनी उसके अंदर मेंटल इंटेंसिटी हमने पोर इन करी, मेंटल एनर्जी उसको दिया और वो मान्यता को मैंने पकड़ के रखा, वो हो जाता है। और भी ये कहा जाता है कि विचार एक ऐसी महान शक्ति है कि जितना आप सोचोगे उतना आपका पावर उसमें इन्वेस्ट होता है। और इसीलिए नकारात्मक विचारों में अगर वो पावर इन्वेस्ट हुआ तो वो रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे, और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आपने उसमें वो पावर को इन्वेस्ट किया तो वो भी आपको बहुत प्राप्ति का अनुभव भी कराता है, बहुत ऊंचाइयों पर भी व्यक्ति चढ़ जाता है। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑनरेबल लेट मिस्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमेशा ये कहते थे, ड्रीम योर विजन। और जो व्यक्ति दिन में सपने देख सकता है वो उसको अचीव किए बिना रह नहीं सकता है। आपने देखा कोई चीज और उसको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना शुरू किया, वो होकर के रहता है, साक्षात हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, और जितना व्यक्ति नेगेटिव सोचता है उतनी उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। इसीलिए पॉजिटिव सोच करके बैटरी चार्ज करो। लेकिन इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। जो आज सोचा माना कल से लेकर पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगा, ख्याल हमारे बहुत खूबसूरत आउट ऑफ द ब्लू शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका भी स्रोत चाहिए। जिस तरह से एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, एक मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए एक सोर्स चाहिए जिसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ता है, और जब उसको कनेक्ट करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है उसी से वो बैटरी रिचार्ज होती है। ठीक इसी तरह इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस और अपने आप नहीं होने वाला है, हमें भी कुछ स्रोत के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। और स्रोत क्या है तो मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आधार है कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आज उसी का ही ह्रास होने लगा है। दिन प्रतिदिन हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत लो होने लगी है, क्योंकि हम यूज करते जाते हैं लेकिन स्पिरिचुअली नरिश नहीं करते हैं अपने आप को। तो जिस तरह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वैसा खुराक जरूरी होता है, जैसा खुराक आप लेते जाएंगे वैसी वैसी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और प्रॉपर नरिशमेंट अगर होगा, मिनरल्स वाला, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए उस हिसाब से अगर हम नरिशमेंट देते हैं तो फिजिकल इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक इसी तरह मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी स्पिरिचुअल नरिशमेंट बहुत आवश्यक है। ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट ही हमें वो इंग्रेडिएंट्स या वो न्यूट्रिएंट्स देंगे जो माइंड को सशक्त बना सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के साथ साथ मेंटल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए कहा जाता है अच्छा पढ़ो, अच्छा कुछ चिंतन करो, अच्छी बातें एक्सचेंज करो। और इसीलिए आजकल व्हाट्सएप के ऊपर काफी अच्छे अच्छे थॉट फॉर द डेज आते हैं, आज का सुविचार कई लोग हमें भेज देते हैं, लेकिन उसको पढ़ करके हम सोचते हैं ये चीज फलाने के लिए बहुत अच्छी है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो चीज हमारे पास तो रही नहीं। आज किसी ने हमें भोजन दिया भी, अगर मान लो बहुत अच्छा सुंदर विचार आया, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको किसी और को ऑफर कर लिया, तो हमारे अंदर तो वो नरिशमेंट बढ़ा ही नहीं। कहने का भावार्थ है, योग का दूसरा नाम है प्रयोग, कि जो विचार आया है अगर पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगा तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करके तो देखें, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे एक बच्चे को स्कूल में थियोरेटिकल नॉलेज होती है, आप सभी ने पढ़ाई किया, आप सभी को एक कोई प्रिंसिपल समझा दिया गया थियोरेटिकली, लेकिन फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स भी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है लैब में ले जाकर के, और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद कई चीज और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा और उसको आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया। ठीक इसी तरह लाइफ में भी ये स्पिरिचुअल विजडम जो है बहुत अच्छी चीज है, परंतु जीवन एक लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में उसका प्रयोग करके देखो, या अपने विचारों के लेवल पर प्रयोग करके देखो, या अपने एटीट्यूड के लेवल पर उसको बार बार सोच करके उसके ऊपर अध्ययन करो, देखो उसके उसको व्यवहार में अप्लाई करके देखो, हमारे कर्म में उसको अप्लाई करके देखें क्या रिजल्ट निकलता है, हमारे संबंधों में उसको अप्लाई करके देखें, जो विचार जिस तरह का है जहां उसको अप्लाई कर सकते हैं, या खुद पर अप्लाई करें या हमारे रिलेशनशिप पर अप्लाई करके देखें, तो देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो भी एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बन जाता है। आज कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड कब होता है कि वो अपने उस नॉलेज को, जो नॉलेज उसने कहीं सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं से प्राप्त हुआ है, और जाने अनजानेपन में ये जब हमारे व्यवहार में, कर्म में, रिश्तों में, प्रयोग में आ जाती है, अनजानेपन में ही प्रयोग में आ गई, तो प्रयोग में आते ही हमको लगता है अरे ये तो आज समझ में आया, इतनी अच्छी बात है, ये तो कितना अच्छा है। रिजल्ट जब देखते हैं तो ये तो समझा ही नहीं था कि इतना बड़ा सिद्धांत भी है, ये प्रैक्टिकल जीवन के लिए उपयोगी है, ये समझा ही नहीं था। तो कई चीजें जब प्रयोग करते हैं तब आती है। इसीलिए सुंदर विचार है हमारे, क्योंकि आज आप सभी तो प्रैक्टिकल देखते हैं दुनिया के अंदर। दुनिया में आपको रहना होता है, आप अपने फील्ड पर हैं, अनेक प्रकार के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और वो पेशेंट्स के हालातों को देखते हुए आप समझते हो कि इनके विचारों का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए डॉक्टर्स यही काम करते हैं कि किसी को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अरे कल तो तुम ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा, देखना कितना अच्छी तरह से तुम फंक्शन कर सकोगे। जबकि कई बार आपको मालूम है कि ये बीमारी जिस तरह से है उसको शायद उसमें से बाहर आने में उसको बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए उसको बहुत मनोबल की आवश्यकता है, तो आप उसी समय से उसको मोटिवेट करना शुरू करते हैं, अच्छे विचार इन्फ्यूज करना शुरू करते हैं दवाई के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि तभी आपकी दवाई भी काम करती है। और ये जो अच्छे विचार इन्फ्यूज किए यही तो दुआ है, तो दुआ और दवा दोनों ही मिलकर के काम करती है। तो अच्छे विचारों को आप कई बार पेशेंट्स में इन्फ्यूज करते हुए देखते आए उसके रिजल्ट्स के, कई लोग बहुत जल्दी, क्योंकि अक्सर उनका आप पर विश्वास जिस तरह से होता है उस विश्वास के कारण भी आप बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट अनुभव करते हैं कि वो विश्वास बहुत काम करता है और इसीलिए आप अच्छे विचार उनके अंदर इन्फ्यूज करते जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ को भी, क्योंकि जब आप इतना समय इतना घंटे दूसरों के जीवन के लिए देते हैं तो शायद आपके परिवार वालों के घंटे भी छीन करके आप उनको देते हैं, तो इसीलिए जो थकावट होती है और फिर घर में आकर के भी अगर कोई आपके साथ में ठीक से व्यवहार न करे या ठीक से जिस तरह से आपको चाहिए वो चीज नहीं मिले तो नेचुरल है कि वो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ता है। भावार्थ ये है कि जो चीज आप दुनिया को इतने परिवार के घंटे भी छीन करके उनको दे रहे हो, इस लॉकडाउन के अंदर कम से कम खुद के लिए वो समय मिला है, खुद के लिए वो अवसर मिले हैं, परिवार के साथ बिताने का आपको चांस मिला है, तो इस चांस का सदुपयोग करें हम। और इसीलिए कहा कि ये ताली बजने के बजाय यही अगर शक्ति बन जाए तो कितना सुंदर होगा। तो इसीलिए जब समय मिले कुछ अच्छी बातें सुने पढ़े और उसके आधार पर चिंतन में उसको ले आए, इतने सुंदर विचार हम अपने बनाए कि जिस सुंदर विचार आगे चल करके हमारे लिए कितना कार्य करेगा, क्योंकि जो इनपुट गया है जब वो धीरे धीरे चिंतन में आते आते डाइजेस्ट होने लगता है, हमारे ख्यालों से हमारा व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनने लगता है और ये सब कॉन्शियस लेवल पर किस तरह से काम करता है कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई चीज अंदर चली तो गई चाहे अच्छी या बुरी, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वो कैसे काम कर रही है। और सबकॉन्शियस लेवल पर जब ये काम करती है तब जिंदगी के अंदर उसका अनुभव आप कर सकते हैं और फिर आपको लगता है कि बात सुनी तो थी लेकिन ये मेरी लाइफ में इस तरह से करेगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब अच्छी बातें सुनते हैं अंदर चली जाती है, अच्छी लगती है, सबकॉन्शियस लेवल पर वो कुछ न कुछ काम करती रहती है और आत्मा अगर स्वयं का मित्र है तो नेचुरल है उसको हम विकसित करते जाते हैं, डेवलप करते जाते और डेवलप करते करते जीवन के अंदर उसका सुंदर स्वरूप देखने लगते हैं। तो इसीलिए ख्यालों को खूबसूरत करते हुए अपने जीवन के अंदर उसके परिणाम को अनुभव करना है। ये विचार हमें कहा जाता है कि बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं। खाली विचार कर लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उन विचारों के अंदर विश्वास होना चाहिए, नहीं तो वो एक ख्याली पुलाव हो जाता है। और तब कई बार कई लोग मुस्कुराते भी हैं या हंसी मजाक भी उड़ा देते हैं कि आपके विचार तो बहुत अच्छे, लेकिन बस विचारों तक था, वो प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ आया। तो इसीलिए उन विचारों को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए आप खुद भी अनुभव करो कि सचमुच जितना जितना उसके ऊपर बार बार सोचते रहेंगे तब वो हमारे जीवन में किस तरह से काम करना शुरू करता है और हमारे परिवार को कितना सुंदर वो महकाना शुरू करता है, इतने सुंदर खुशबू बिखेरने लगती है वो परिवार जो एक शक्ति है जहां हर कर्म में नेचुरल कुशलता आ जाती है। यही तो योग है और इसीलिए हम यही कहेंगे कि जैसे कहा कि ख्यालों को खूबसूरत करने के लिए जो भोजन चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी ठीक है बहुत बोरिंग लगता है, मेडिटेशन बहुत बोरिंग लगता है। खैर आजकल तो एक जागृति जरूर आने लगी है, लेकिन फिर भी कई बार कई लोगों को लगता है कि ये कहीं बोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा है कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा, उसको फुल आजादी होती है जब बचपन में, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे, कोई घुमाने ले जा रहा है, कोई उसको खेलने के लिए ले जा रहा है, कोई कहां ले जा रहा है, तो इतनी आजादी जिसने अनुभव की हो, उसके बाद जब उसको स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में ही चाहे तो भेजो, लेकिन वो रोना शुरू करता है क्योंकि उसको लगता है मेरी आजादी खत्म हो रही है, मेरी आजादी मुझसे छीनी जा रही है, अब वो चीज नहीं होंगी। वो भी समझता है और इसीलिए वो रिएक्ट करता है, रोना शुरू करता है, उसको पसंद नहीं आता है, स्कूल जाना पसंद नहीं, लेकिन नहीं पसंद है इसलिए छोड़ देना ऐसे तो नहीं करेंगे हम। और इसीलिए माँ उसके साथ जाती है या कोई ना कोई उसके साथ जाता है, वहां बैठता है ताकि उसको भी आदत रहे हाँ कोई है मेरे साथ में। और जैसे जैसे फिर वो हिर जाता है उस वातावरण के अंदर, कुछ दिनों तक लगातार उसके साथ जाने से वो हिर गया उस वातावरण में, फिर उसको वो ज्यादा पसंद आता है। हर बार जब भी एक चेंज आता है लाइफ में, वी आर नेवर कंफर्टेबल, करना पड़ता है अपने आप को कंफर्टेबल। जैसे एक बच्चा फिर पढ़ाई पढ़ने में कंफर्टेबल हुआ, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में गया, वहां पर भी उसने अपने आप को एडजस्ट किया, लेकिन सेकेंडरी से जब कॉलेज में जाता है वहां टोटल एक अलग माहौल है, एक अलग तरीका है लोगों का। और इसीलिए जब उस माहौल में जाता है तभी भी उसको अंदर में एक डर होता है। और अगर वहां पर, आजकल तो नहीं है लेकिन जब रैगिंग होती थी और उस रैगिंग का शिकार होते थे तो काफी लोग छोड़ने के उस पर आ जाते थे या रिएक्टिव हो जाते थे या फिर एकदम जैसे फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में आता था, देखा गया है। और इसीलिए धीरे धीरे उसको बंद करना जरूरी समझा लोगों ने कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में वो चीज नहीं थी और कॉलेज में आकर के ये जब उनके ऊपर गुजरता है तो किस तरह की उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है, कभी कभी रिवेंज लेने वाली स्थिति हो जाती है, बदला लेने वाली स्थिति हो जाती है। और इसी तरह से वहां से फिर उसको यूनिवर्सिटी में जब जाना होता है तो वहां भी, तो हर जगह वो अपने आप को एडजस्ट करता है क्योंकि उसको पता है यही मेरा फ्यूचर है, इस पढ़ाई से ही मैं जीवन में कुछ कर सकूंगा, कुछ बन सकूंगा और मैं जो चाहूंगा वैसे अपने लाइफ को बना सकता हूं। लेकिन ये समझ जब उसके परिवार वाले भी उनके अंदर इन्फ्यूज करते हैं तब वो अपने जीवन में कुछ बन पाता है। लेकिन जिनके जीवन में कोई ऐसा पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता है और वो इंटेलिजेंस है उनके पास लेकिन क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं है तो वो इंटेलिजेंस कैसे नकारात्मक दिशा में भी यूज होती है। आज जितने साइबर क्राइम आदि हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग कर रहे हैं, कोई बेवकूफ लोग नहीं कर सकते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल। कई चीजों को जब हैक करना होता है, कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं, सिस्टम हैक हो जाती है, ये कौन करता है? बेवकूफ लोग नहीं करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं, कि जिनके जीवन के अंदर कोई दिशा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो वो किस दिशा में चले गए, कैसा व्यक्तित्व उन्होंने अपना बना लिया, ये भी हम स्पष्ट देखते हैं। तो दोनों चीज हमारे सामने है और दोनों चीज को हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को बनाए, ये चाहते हैं। और इसीलिए जब बच्चों को उस तरह की परवरिश देते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चों को परवरिश इस तरह की न भी मिली तो कहीं न कहीं कोई ड्रग्स के शिकार भी हो जाते हैं। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि आज जो नरिशमेंट हमें मिल रहा है, वो नरिशमेंट जितना स्पिरिचुअल होगा, उतनी हमारे मन को एक श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है, ख्यालों को एक बहुत सुंदर दिशा मिल जाती है। और अगर हमारे ख्यालों को बहुत सुंदर दिशा मिल गई तो हमारी जीवन की दशा ही बदलने लगती है। तो दिशा और दशा, दिशा से ही तो जीवन की दशा परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए दिशा बहुत श्रेष्ठ जरूरी है, और ये दिशा हमें आध्यात्मिकता ही दे सकती है। यही हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। जो कहा कि आज अगर सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, और वो मनुष्य आत्मा अपनी उस क्षमता के कारण विशेष है, सोचने की क्षमता, जजमेंट की क्षमता, जो डिसीशंस लेने की ताकत है उसके अंदर, उसी से वो बहुत सुंदर अपना भविष्य क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए तो वो भविष्य को क्रिएट करने का आधार और भी है कि जिस तरह के वो संग के रंग में आता है, ख्याल उसी से ही अच्छे भी बनते हैं या दूषित भी होते हैं। कई बार माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी परवरिश दी बच्चों को, लेकिन जब वो हॉस्टल में जाते हैं और वहां बुरी संगत मिल जाती है, तो संग भी एक बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति की दिशा को निर्मित कर देता है, और वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। कई अच्छे घर के बच्चों को देखा गया है, क्योंकि अच्छे घर के बच्चों को जब इनफ पैसा आता है पॉकेट मनी के रूप में भी, तो वही कहीं ना कहीं बुरे संग में फंस करके ड्रग्स के शिकार भी बन जाते हैं, तो अपने जीवन की दशा क्या कर देते हैं। तो इसीलिए मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को आज के युग में बहुत जरूरी है। खाली आज के युग की बात नहीं है, आने वाले समय के लिए भी। जिस तरह ये महामारी आई तो कहा फिजिकल इम्यूनिटी बहुत जरूरी थी, वही इस बीमारी के लड़ाई में जीत सके। आने वाले समय में मेंटल इम्यूनिटी बहुत अच्छी जरूरी है, और इसी तरह आने वाले उससे आगे के समय में स्पिरिचुअली व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हिम्मतवान होना चाहिए। आज जब व्यक्ति की मेंटल इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, उसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है, और आत्मविश्वास क्षीण होने के कारण ही वो जीवन के अंदर गलत कदम उठा लेता है, सोच नहीं पाता, क्योंकि जो मनोबल उसको चाहिए वो मनोबल उसके पास है नहीं, अपने आप को भी रोकने का मनोबल उसके पास नहीं है। और इतना ही नहीं, जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है, आने वाले समय के अंदर वही सर्वाइव कर पाएंगे, जिनके पास स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी और ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ही हमारे ख्यालों को बहुत सुंदर विकसित करेंगे, हमें बहुत सुंदर रीति से जीवन प्रदान करेंगे और वही इस संसार में टिक सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं मनुष्य के सामने और उन चुनौतियों को पार करना भी है उसको, ये भी वो जानता है कि इन चुनौतियों को मुझे पार करना ही है। लेकिन जो शक्ति चाहिए वो शक्ति न होने कारण इस इम्यूनिटी को वो बढ़ा भी नहीं पा रहा है और उसके आधार पर जो चुनौतियों को एड्रेस करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम सभी संसार के अंदर जो समाचार सुनते हैं, जो हालात देखते हैं और उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो यही कर सकते हैं कि भाई स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जड़ में या स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का कमी थी, मेंटल इम्यूनिटी की कमी थी और ऐसे अच्छे दोस्त जो मोटिवेट कर सके हमें उस अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से फ्लरिश कर सके, ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त भी अगर है तो वो हमें बुराइयों की ओर ही खींचने वाले होते हैं, बुराइयों की ओर ही ले जाने वाले होते हैं। तो नेचुरल है दिन प्रतिदिन व्यक्ति की इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। या अगर कहीं से कुछ हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति आई जीवन के अंदर, तो उसको फेस करने के बजाय ये गाइडेंस दे देते हैं रिवेंज ले लो। और इसीलिए देखा जाता है या व्यक्ति खुद, डॉक्टर्स जैसे बताते हैं कि व्यक्ति जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो या तो सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है या तो फिर सिजोफ्रेनिक होकर के दूसरों को खत्म करने की भावना उसके अंदर आ जाती है। आज प्रैक्टिकल दुनिया के हालातों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के अंदर, क्या आज वर्ल्ड के अंदर जो गोरे काले का एक लड़ाई चल रही है, जो भावनाएं विकसित हो रही है, ये सब बता रही है कि या तो व्यक्ति खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इसीलिए ड्रग्स लेने लगता है, या तो फिर व्यक्ति सिजोफ्रेनिक हो जाता है, दूसरों को खत्म करने पर वो तुल जाता है। और इस तरह से दोनों ही देखा जाता है कि अपने भविष्य को अंधकारमय बना देता है। इतना सुंदर ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन, इतने सुंदर वरदानों से हम सुसज्जित है जब इस संसार में आए तब, लेकिन हमने अपने जीवन की क्वालिटी कैसे बना दिया। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर बनाए, अपना घर का माहौल इतना सुंदर बनाए इतने सुंदर विचारों के साथ। इसे बहुत सुंदर कहीं पढ़ा था कि घर के अंदर क्यों ना हम वाईफाई जोन बना दें, और वाईफाई जोन मतलब सारा दिन वो इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उस पर नहीं, ये वाईफाई जोन नहीं बनाना है अपने घर को, लेकिन वाईफाई जोन माना विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, वाईफाई विदाउट इंटरनेट, WI विदाउट इंटरनेट फाई फैमिली इंटरेक्शन, ये माहौल हम बनाए अपने बच्चों के अंदर भी, सुंदर ख्यालों को हम इन्फ्यूज करें उनको दे, ताकि आने वाले समय के अंदर जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की उसको आवश्यकता है वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम उसकी मदद करें। जिस तरह आप एजुकेशन के पीछे इतना उनका ध्यान रखते हैं, उनको कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी होगी तो वो उस फील्ड में भी बहुत अच्छा बन करके दिखाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। इसीलिए आने वाले समय के लिए, जैसे कहा कि अब तो ये महामारी में फिजिकल इम्यूनिटी चाहिए, आने वाले समय में मेंटल इम्यूनिटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी और उससे आगे जो समय है उसमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता होगी। आप सोचेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा ही हो गया कि आग लगने पर कुआं खोदने जाओ तो क्या कहेंगे। इसलिए कुआं पहले से खोदना होता है, आग लगने के वक्त नहीं खोदना होता है। पहले से ही अपने मन को हम संवारना शुरू करें, तब जाकर के उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे भी करके ओवरकम करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। तो उस समय नहीं होता है, परीक्षाएं आ जाए उस समय हम तैयारी करने लगे, ये नहीं होता है। परीक्षा से पहले ही तैयारी की जाती है। तो इसीलिए आरंभ में बोरिंग महसूस भी होगा, क्योंकि एक चेंज है, लेकिन धीरे धीरे उस चेंज का जब इम्पोर्टेंस हम अपनी लाइफ में महसूस करेंगे और उसकी वैल्यू को रियलाइज करेंगे, तब उसको करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सुंदर विचारों के साथ हम अपनी दुनिया को सुंदर बना सकेंगे। क्योंकि मनुष्य की कर्मों की सृष्टि उसके विचारों के आधार पर है। तो विचार अगर सुंदर है, ख्याल अगर खूबसूरत है, तो हमारी कर्मों की दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे हमारा जो छोटा सा संसार है, अपनी जीवन बहुत सुंदर हो जाएंगी, हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर निखरने लगेगा, ये महसूस कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा यही रखते हैं कि आप सभी अपने जीवन को संवारना शुरू करो और बहुत सुंदर अपने परिवार के अंदर ताली बजाने के बजाय शक्ति बन जाए एक दूसरे की, और शक्ति बन करके बहुत सुंदर अपने गृहस्थ जीवन को अनुभव करो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राण दाता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ, उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से करे शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया आपका करते हैं शुक्रिया। देशवासियों का शुक्रिया, सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ है जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिल दुआ। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया प्राणदाता तेरा शुक्रिया।
हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को, जो ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ी थे। आप सभी की तरफ से मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले वक्ता एक बहुत ही जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज भारत में एक महामारी का रूप ले चुकी है। इस लाइफस्टाइल संबंधी डिसीज के बारे में जितनी जागरूकता फैलाई जाए उतनी कम है, मगर इसी को जीवन का उद्देश्य बनाकर आध्यात्म और आरोग्य को हर एक के लिए लागू करवाना डॉक्टर श्रीमंत साहू जी का उद्देश्य बन चुका है। डॉक्टर श्रीमंत साहू ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। पिछले अनेकों वर्षों में उन्होंने हजारों लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया है। उनके मार्गदर्शन में लोग अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में रखने की अनोखी विधियां सीख रहे हैं। डायबिटीज मैनेजमेंट के उनके व्याख्यानों को लोग बड़े ही पसंद से सुनते हैं। डॉक्टर श्रीमंत साहू ने 300 से भी अधिक कार्यक्रम डायबिटीज के जागृति के बारे में की है। आध्यात्म और स्वास्थ्य के बीच के संबंध को वो एक अनूठे रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके विचार।
ओम शांति। आई एम एड्रेसिंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी। Today, all of us are in a critical situation. Looking at the world scenario, what do you feel? आप सभी को कैसा अनुभव हो रहा है? थम गया सारा संसार, थम गया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा भी समय आएगा। अमेरिका जैसा डेवलप कंट्रीज में भी क्या हालत है हम देख रहे हैं। वास्तव में सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हम सभी, खास करके जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हमारा जीवन सबसे तनावग्रस्त है। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, फियरफुलनेस, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। आप सभी समाचार सुनते रहते होंगे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और बड़े बड़े शहरों में खास जिस प्रकार स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इतने लोगों की इतने प्रकार के समस्या है। हमारे पास बेड्स नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, इतने नर्सेस नहीं है, इतने जिस प्रकार का इसका इलाज होना चाहिए ऐसा है नहीं। किस प्रकार के समय पर हम सभी गुजर रहे हैं आप सभी जानते होंगे। मैं क्योंकि खास डायबिटीज प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए मैं डायबिटीज का इसका क्या रिलेशन है मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। जो पेशेंट्स बहुत समय से बिल्कुल एकदम नॉर्मल मेंटेन करके चल रहे थे, अभी लॉकडाउन होने के कारण कोई आ तो नहीं पा रहे हैं माउंट आबू, फोन पे ही बहुत लोगों के साथ बात हो रही है। मेजोरिटी लोगों का शुगर एकदम शूट कर रहा है, क्योंकि सभी लॉकडाउन के कारण जो आउटडोर एक्टिविटीज है, जो वर्कआउट्स करना है कर नहीं पा रहे हैं। घर में रह के सभी का, आप सभी न्यूज सुने होंगे कि पिछले 3-4 महीने के अंदर ही मेजोरिटी लोगों का 3-4 किलो वेट बढ़ गया। तो जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम सभी गुजर रहे हैं, ऐसे समय पर डायबिटीज और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है और हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट अस डिस्कस हियर। स्ट्रेस वास्तव में इट इज ए सिचुएशन इन लाइफ। कभी भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मनुष्य उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, कैसे मुकाबला करें, उनके रिसोर्सेस की कमी फील करता है और जब मन में विचार चलता है क्या करूं कैसे होगा, उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है। व्हेन ए पर्सन फील्स दैट ही इज अनेबल टू कोप अप विद द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ हिम, टैकल द सिचुएशन और द सर्कमस्टेंस इन फ्रंट ऑफ हिम, ही फील्स स्ट्रेसफुल। और जब स्ट्रेस होता है वास्तव में डायरेक्टली हमारा मन पर उसका असर होता है। मन में जब किसी को स्ट्रेस होता है कितने प्रकार के थॉट्स चलते हैं। नॉर्मली एक व्यक्ति के मन में 40-50 हजार थॉट सारे दिन में क्रिएट करते होंगे हम, लेकिन जब स्ट्रेस हो जाता है कितने गुना इस थॉट्स बढ़ जाते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और ये थॉट्स का डायरेक्ट हमारे इमोशन पर, हमारे बिहेवियर पर और हमारे फिजिकल बॉडी पर भी इसका डायरेक्ट असर होता है। जब स्ट्रेस होता है थॉट्स में, जब नेगेटिव सोच चलते हैं, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे इमोशन पर उसका असर होता है। हम बिल्कुल आइसोलेटेड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, डरावना का माहौल आता है, ऐसा लगता है, एकदम डर लगता है, घबराहट होता है, इरिटेशन होता है, ये सब मन पर असर होता है और इसका फिर बिहेवियर पर असर होता है। कोई फिर स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, कोई बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना शुरू कर देता है, कोई अल्कोहल ड्रग लेना शुरू कर देता है और हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाती है, हमारे बॉडी में भी उसका असर शुरू हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, फिर चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, पल्पिटेशन शुरू हो जाता है, नींद उड़ जाती है। तो स्ट्रेस हैज डायरेक्टली रिलेशन विथ आवर थॉट्स और इमोशन और बिहेवियर, हमारा फिजिकल बॉडी, ये सबके ऊपर इसका बहुत डायरेक्ट गहरा संबंध है। और जब किसी को स्ट्रेस होता है उसके ब्रेन पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पर उसका असर होने के कारण हमारे शरीर में बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, एपिनेफ्रिन्स, एड्रेनालिन, ये सब सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, बार बार सिंपैथेटिक डोमिनेंस होने के कारण बार बार यूरिनेशन के लिए ख्याल आएगा और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। सारे बॉडी पर उसका तो असर होता ही है, लेकिन खास ब्लड शुगर एकदम सर्ज कर जाता है, एकदम शूट कर जाता है और हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है और फिर उनका पल्पिटेशन शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट्स में मेजॉरिटी लोगों का तो कोलेस्ट्रॉल हाई रहता ही है, जिसके कारण फिर स्ट्रेस का जब असर होता है उनको कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए 60% डायबिटीज पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी जिस प्रकार का सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, कितने लोगों का फोन आता है कि डॉक्टर साहब घबराहट हो रहा है, पसीना छूट रहा है, कैसे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया है। तो जो नॉर्मल चल रहा था अभी ये सब स्ट्रेस के कारण ये सब प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। एक डायबिटीज पेशेंट को जब स्ट्रेस होता है तो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस और डायबिटीज में तो कहूंगा ये दोनों ट्विन्स है, जिसको स्ट्रेस होता है उनको ही डायबिटीज होता है और जिनको डायबिटीज होता है वो भी एकदम स्ट्रेसफुल हो जाता है। अरे बाप रे, मुझे डायबिटीज हो गया, मेरे हमारे खानदान में किसी को नहीं, सारा जीवन मीठा नहीं खा सकते, सारा जीवन दवाई लेनी पड़ेगी। पहली बार जब पता चलता है लोगों को एकदम स्ट्रेसफुल फील करते हैं और सही नॉलेज ना होने के कारण कोई क्या करता है। और जो जीवन का गोल्डन पीरियड है डायबिटीज में, पहला 5 साल, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द डायबिटिक लाइफ, उसी 5 साल में कोई अगर अपना पूरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि सब नॉर्मल पैरामीटर्स रख के बॉडी वेट को ठीक कर देता है, और जीवन भर उसका डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और लेकिन वो 5 साल ही लोग सब बर्बाद कर देते हैं, उसी समय अनेक प्रकार के अल्टरनेटिव शुरू कर देंगे, कोई जो बोलेगा हमारे देश में तो कोई कुछ भी प्राय सलाह देने के लिए तैयार है बैठे हैं। खाली लोगों को पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज हो गया, बस देखना, फिर कहेंगे फलाना काढ़ा पी लेना, फलाना ये घुटली खा लेना, वो कर लेना। लोग वही एक्सपेरिमेंट करके उनका शुगर अप डाउन, जब 5 साल के बाद जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, सारा जीवन फिर स्ट्रेस। तो जो 5 साल डायबिटिक लाइफ में जिस दिन पता चलता है, उस दिन से 5 साल तक अगर हमारा शुगर एकदम कंट्रोल रहता है, वो मेटाबॉलिक मेमोरी कहते हैं, आगे चल के कितना भी अपडाउन होता है तो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली नहीं होता है। लेकिन वो 5 साल अगर किसी का शुगर एकदम हाई रहता है, तो वो जो हाई शुगर का जो मेटाबॉलिक मेमोरी आगे चल के भी चलता रहता है और बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है। तो जीवन में डायबिटिक लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन करें तो करें, क्या करें? कोई ड्रग से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं? अनुभव कहता है नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अपने पेशेंट्स किसी भी कारण से, जब उनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जब वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स शुरू करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स लेथार्जिक हो जाते हैं, एकदम फिजिकल एक्टिविटी उनका कम हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, फिर उनको डायबिटीज हो जाता है, फिर वो मुझे मेरे पास भेजते हैं डायबिटीज का इलाज करने के लिए। तो साइकेट्री जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ड्रग्स के कारण लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो इसलिए ड्रग्स से आप स्ट्रेस से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। टेम्पररली किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उस समय मेडिसिन का सहारा लेना जरूरी है, परंतु स्ट्रेस एक सिचुएशन है जिसमें हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे मन में सब नेगेटिव वेस्ट थॉट्स चलता है। वो थॉट्स को जब तक ठीक नहीं करेंगे कैसे ठीक होगा? तो थॉट्स को जब तक, इसलिए द की ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज टू चेंज आवर ओन थिंकिंग पैटर्न। हमारा सोच विचार को ही बदलना बहुत जरूरी है। सोच जब तक नहीं बदलेंगे, तनाव से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। दवाई का फिर अलग रिपरकेशन होता है, उसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है, अलग प्रभाव हो सकता है बॉडी में। कोई भी आप एक ड्रग अंदर दोगे तो जिसका इफेक्ट है उसको तो साइड इफेक्ट होगा ही कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम ये साधन सदा के लिए जीवन में, जो ड्रग्स का रास्ता है वो सदा के लिए नहीं है। हम ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस देखते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जो है, जिसे हमारे देश में योगा प्राणायाम आदि लोग करते रहते हैं, ये जिसमें हम कोई दवाई नहीं लेते देते हैं, लेकिन ये सब साधन द्वारा मानसिक तनाव को ठीक करने के लिए हम सोचते हैं। परंतु ये सब भी वास्तव में एक्सरसाइजेस है, दीज आर वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। योगा जो अभी प्रचलित है दुनिया में, लोग समझते हैं योगा कर रहा हूं, वास्तव में तो योगा है ही नहीं, वो आसन है। महर्षि पतंजलि लॉन्ग बैक टॉट अस योगासन, योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ, आसन इज फॉर फिजिकल हेल्थ। उन दिनों में कोई जिमखाना हेल्थ क्लब तो थे नहीं, तो इसलिए बिना कोई साधन इक्विपमेंट्स लेते हुए बॉडी को कैसे फिट रखें, इसलिए वो अनेक तरह तरह के आसन और प्राणायाम, जो पोस्चुरल एक्सरसाइज जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे, वो हमको सिखाए थे, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी का सब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ठीक रहे, कहीं स्टिफनेस ना आ जाए, कहीं फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, कहीं बैकएक ना हो जाए, ये सब बातों से दूर रहने के लिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, पोस्चुरल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाए गए थे, जिससे कोई तन से ठीक रह सकता है। लेकिन मन को ठीक करने के लिए ये सब साधन नहीं है। मन को वास्तव में इसके लिए ठीक करने के लिए तो मानसिक सोच विचार को ठीक करना पड़ेगा। योगा इज टोटली ए कंप्लीट मेंटल प्रोसीजर, इट हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी। लेकिन धीरे धीरे लोग तो वो योगा तो भूल ही गए, लेकिन आज आसन करते रहते हैं और कहते हैं मैं योगा कर रहा हूं। अभी इंटरनेशनल योगा डे सब सेलिब्रेट करके देखना, सभी में तो बहुत सारे कंट्रीज जाके देखा हूं, लोग सब जिम्नास्टिक कर रहे हैं, मेल फीमेल, और कह रहे हैं योगा कर रहा हूं। वास्तव में दीज आर नॉट योगा। योगा एक प्राचीन पद्धति है जो हमारे भारत में श्रीमद भगवत गीता में भगवान अर्जुन को सिखाए थे, होल श्रीमद भगवद गीता ये योग शास्त्र जो 18 चैप्टर्स है, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, सब योग योग लिखा है। जब अर्जुन को बहुत सीवियर स्ट्रेस था, टेंशन था, महाभारत युद्ध में एकदम गांडीव को नीचे पटका के गाल में हाथ रख के एकदम विवश होके कहता है, हे प्रभु मैं तो बिल्कुल, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे समय पर भगवान उसको योग सिखाए, राजयोग सिखाए। और अर्जुन तरह तरह का सवाल पूछता रहा, अंत में जब समझ गया, उठ के खड़ा होके गांडी पकड़ के कहता है, हे प्रभु मैं कत संशय हो गया, नष्ट मोहा हो गया, स्मृति लब्ध हो गया, मैं अभी मेरे कर्तव्य में जुट जाऊंगा। तो भगवान ने अर्जुन को कौन सा योग सिखाए, क्या पद्मासन, शीर्षासन, वक्रासन, चक्रासन? नहीं नहीं, भगवान ने नहीं कहा कि तुम वहां कोने में जाके आधा घंटा शीर्षासन कर लो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाए, अनुलोम विलोम कपाल भाती आधा घंटा कर ले, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। भगवान ने वो सब नहीं सिखाया, भगवान तो उसको राजयोग सिखाए। भगवान ने कहा, मन मना भव अर्जुन मध्याजी भव, तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ। तो योगा इज ए टोटली मेंटल प्रोसीजर, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर बॉडी। तो आज लोग उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन इज ए साइंस। मेडिटेशन शब्द आया है मेड्री शब्द से। मेड्री मीन्स टू हील। आवर पॉजिटिव थॉट्स हील, आवर नेगेटिव थॉट्स किल। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस में काम करके हमारे अंदर बहुत सुंदर पैरासिंपैथेटिक डोमिनेंस होता है, और ब्रेन से हमारे सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और डोपामिन एंडोर्फिन्स सिक्रेट होते हैं, जो सुंदर हार्मोन्स, वो हमें एक सेंस ऑफ वेलबींग, एक बहुत सुंदर यूफोरिया कहते हैं मेडिकल भाषा में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुखद अनुभव होगा, आप हेल्दी फील करेंगे। वो नर्व एंडिंग से जब सिक्रेट होते हैं, हमारा बीपी कम हो जाता है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, हमारा ब्लड शुगर कम हो जाता है, हमें साउंड स्लीप आता है, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, वो फिर वो एकदम नेगेटिव इफेक्ट होता है, एकदम हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल एकदम सर्ज कर जाता है, फिर हमारा बीपी बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, नींद उड़ जाएगी, सांस तेज हो जाएगा, बार बार पेशाब लगेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, बार बार टॉयलेट दौड़ते रहेंगे, ये सब रिपरकेशन होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसको हम सिंपैथेटिक डोमिनेंस एक्शन कहते हैं। तो फिर आपको घबराहट होगा, पसीना छूटेगा, एकदम बिल्कुल एजिटेटेड फील करेंगे, चेस्ट पेन होगा, धड़कन बढ़ जाएगा, घबराहट होगा, आइसोलेटेड फील करेंगे, डर लगेगा, डरावना सिचुएशन अनुभव करेंगे। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स के दुष्प्रभाव है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस से बचने का एक ही मात्र विधि है, जो हमारे राजयोग, जिसको भारत में राजयोग सिखाया गया था, जो भगवान हमको सिखा के गए थे, जो आज प्राय विस्मृत हो गया था, लोग उसको मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग मेडिटेशन। मेडिटेशन माना टू हील। तो हमारे जब तक हमारे मन में अच्छे विचार क्रिएट नहीं करते हैं, कैसे हीलिंग शुरू होगी? तो राजयोग मेडिटेशन इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे मन में कैसे अच्छे विचार क्रिएट करें, उसका विज्ञान का नाम ही मेडिटेशन है। उसमें सेल्फ रिलेशन करना, गॉड रिलेशन करना, आत्मचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना, सबके प्रति शुभ चिंतन करना, उसको मेडिटेशन कहा जाता है, जो ब्रह्मा कुमारी सिसुरे विश्वविद्यालय में निःशुल्क सिखाया जाता है। हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को, हुएवर इज इंटरेस्टेड, उनको द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मेडिटेशन फ्री सिखाते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी आप नेट में सर्च करेंगे तो आप इतने सारे आपको ऑनलाइन मिलेंगे, इतने सारे क्लासेस, ऑडियो वीडियो, सारे हेल्प आपको मिलेगा। आप मेडिटेशन सीखिए, देखिए जीवन में क्या अनुभव होगा। बीइंग ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं, व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, आई ज्वाइन ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एज ए मेडिकल ऑफिसर, एंड डेली आई वॉज सराउंडेड बाय, घेराउड बाय ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स इन द ओपीडी। नोबडी विल कम इन ए क्यू, ऑलवेज आई विल बी सराउंडेड बाय 20-30 पेशेंट्स, एंड एवरीबडी इज इन हरी, दे विल बी शाउटिंग, डॉक्टर साहब जल्दी करो, डॉक्टर साहब जल्दी करो। मुझे ऐसा लगता था जैसा अर्जुन का मैं बताया एग्जाम्पल, मैं डेली हॉस्पिटल आते समय ऐसा अनुभव होता था कि एज इफ आई एम एट वार। मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं, मैं वार फील्ड में जा रहा हूं डेली। लेकिन फॉर्चुनेटली आई कैन टेल यू, इट इज माई गुड फॉर्च्यून कि आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रह्मा कुमारी इन दैट पीरियड, एंड I learned meditation, I learned positive thinking. In a just a month of span of time, my entire life changed. I became the most popular doctor in that hospital. Previously, I was shouting and ekdam logon ke saath aisa irritation hota tha ki baat mat puchhiye. Log bhi gussa karte the, main bhi gussa karta tha, young blood tha. Lekin jab meditation sikha, mera pura entire life change ho gaya. Aur धीरे 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 जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आए, उसको वेरी विथ पेशेंस, लवफुली, विथ कूल माइंड, हाउ यू कैन टैकल, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. आई अचीव दैट पावर एनर्जी विद इन मी. तो आज हम सभी को, खास करके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, लोगों को स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन आज हम सभी जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, स्ट्रेस के कारण हमको डायबिटीज ना हो जाए. क्योंकि आज मैं बताऊं, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी इतने सारे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो हम जब तक खुद को ठीक नहीं करेंगे, दूसरों को क्या ठीक कर सकते हैं. तो इसलिए मैं कहूंगा, हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें. और अगर आप मेडिटेशन खुद प्रैक्टिस करते भी हैं, तो आप योगी हैं, बहुत अच्छा है, बधाई हो. लेकिन अभी योग का प्रयोग करें, योग का प्रयोग करें, उस मेडिटेशन पावर को कैसे हम बॉडी को हीलिंग कराएं वो सीखें. जो ब्रह्मा कुमारी, जो हमारे ट्रस्ट हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू पर है, वहां माउंट आबू में हमारे उस हॉस्पिटल में सारे भारत के कोने कोने से पेशेंट आते हैं, जिसका कभी कंट्रोल नहीं शुगर 400-500 लेके. जब उनको हम मेडिटेशन सिखाते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, 2-3 दिन में ही सबका शुगर नॉर्मल हो जाता है. अभी हम नडियाद में, भावनगर में, वहां हमारे ब्रह्मा कुमारी का रिट्रीट सेंटर है, वहां कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्सेस नहीं, कुछ नहीं. हमारी बहनें उनको एकदम बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट खिलाते हैं और उनको सवारी उठाकर मेडिटेशन सिखाते. हम 50-50 फैमिली को लिए एक ही साथ, और हम चार ग्रुप को लेके एक्सपेरिमेंट किए. 2-3 दिन में ही सबका, 5 दिन के अंदर तो सबका शुगर, बीपी सब नॉर्मल हो गया. लोगों ने 10-10 किलो वेट आराम से 3 महीने में, 4 महीने में घटा दिए, और सबका एकदम मिनिमम दवाई कम हो गई. तो आज डायबिटीज के लिए आवश्यक है राजयोगी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना. डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिजॉर्डर. जब तक आप लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, कैसे ठीक होगा. इसलिए चलें, हम सभी मिलकर हमारी जीवन शैली को सुधारें, राजयोग मेडिटेशन खुद सीखें, हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स, और हम खुद भी सुरक्षित रहें डायबिटीज और दूसरे बीमारियों से, एनसीडीज से और मानसिक बीमारियों से, और हमारे पेशेंट्स को भी राजयोग मेडिटेशन सिखा के उनको भी हेल्दी बनाएं. यही मेरा शुभ संदेश है. कंग्रेचुलेशन इन एडवांस, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीमंत साहू जी का. शाम के सत्र में दोबारा मुलाकात होगी, कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई प्रेरणाओं के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. ओम शांति.